पाठ सात। परमेश्वर उनके लिए जीने की हमारी लड़ाई में प्रभावी साधन देता है। इनका प्रयोग किए बिना हम असफल हो जाएंगे। जीवन कठिन है। ईसाई धर्म कोई ऐसी आस्था नहीं है जो आपको छुपा कर रखती है ताकि आपको चोट ना पहुंचे, बल्कि परमेश्वर ने हमारे दिलों में आग लगा दी है और हमसे कहा है कि हम उस अंधेरे में उस लौ को प्रदर्शित करें जिसमें हम पैदा हुए थे। वो हमसे कहते हैं कि दुनिया हमसे जिस तरह की अपेक्षा करती है उससे अलग अपना सच्चा जीवन जिएं। जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमें जीवन भर निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। हम प्रतिदिन कई बार खाते हैं, हम प्रतिदिन कई घंटे सोते हैं, हम प्रतिदिन इतना पानी पीते हैं। भोजन, पानी और नींद के आत्मिक प्रतिरूप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरों के साथ उसकी पूजा कर रहे हैं। दुनिया गंदी है, हमें पवित्र रहना आवश्यक है। जीते जी हमारे दिलों पर रोज गंदगी डाली जाएगी। हम अपनी आंखों से विकृति देखते हैं, हम अपने कानों से श्राप या गालियां सुनते हैं, हम अपने हाथों से कांटों का दर्द और दोस्तों के मुक्कों का एहसास करते हैं, हम अपनी जीभ से कड़वे जहर का स्वाद चखते हैं, हम अपनी नाक से मौत की सड़ांध को सूंघते हैं। गंदगी धोने, अंधकार को पीछे धकेलने और हमारे चारों ओर की दुनिया को बदलने के लिए परमेश्वर ने हमें कौन से औजार दिए हैं? पहला, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उसने बाइबल में हमारे जीवन के लिए अपनी योजना का खुलासा किया। बाइबल का पाठ पढ़ने और परमेश्वर के वादों को अपने अंदर संजोने से हमारा मन शुद्ध होता है और हमारे दिल मजबूत होते हैं। दूसरा, उन्होंने हमारे अंदर पवित्र आत्मा डाला है ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और महसूस कर सकें कि वो हमारे प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह हमारे दृढ़ विश्वास को गहरा करता है और हमें अलग तरीके से जीने और दुनिया को बदलने में मदद करने की सामर्थ्य देता है। तीसरा, उन्होंने हमें उपासना के लिए बनाया। जब हम उसकी उपासना करते हैं तो वो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं और उन घावों को ठीक करना शुरू कर देते हैं जो यह संसार हमें देता है। चौथा, उन्होंने हमें लोगों, जानवरों और उस दुनिया का आनंद लेने और प्रेम करने के लिए बनाया जो उन्होंने हमें सीमाओं के भीतर दी है। हमें अन्य लोगों के साथ रहने और प्राकृतिक संसार का आनंद लेने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हमें अन्य लोगों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देने की जरूरत है। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उनसे हमारी तरह प्रेम करते हैं, ये हमें प्रोत्साहित और मजबूत करता है। ये हमें असंतुलित होने से बचाता है। इसे चर्च कहते हैं। चर्च कोई इमारत नहीं है जिसमें हम मिलते हैं या कोई सेवा जिसमें हम शामिल होते हैं। चर्च वे लोग हैं जो परमेश्वर और हमसे दोनों से प्रेम करते हैं। अन्य लोगों के साथ समय बिताना जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यानी बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपासना करना और एक दूसरे को उस तरह जीने में मदद करना जैसा वो हमें बाइबल में रहने के लिए कहते हैं, अत्यावश्यक है। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या अन्य ईसाइयों से मिलना महत्वपूर्ण है, लेकिन बाइबल कहती है कि यही तो संपूर्ण मुद्दा है। यीशु एक प्रेमी समुदाय का निर्माण करने के लिए ही फिर से उठे, एक ऐसा समुदाय जो उनमें शुद्ध हुआ और उनसे संतुष्ट हुआ। मृतकों में से जीवित होने के बाद उन्होंने अपने व्यवहार के द्वारा इसका उदाहरण दिया। जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ खाना खाया, उनके साथ घूमे और उनके निजी कमरों में उनसे मुलाकात की। यदि यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है तो एक पादरी द्वारा हमें बताई गई यह उत्तेजक कहानी मदद कर सकती है। एक दिन एक आदमी एक पादरी के पास आया और बोला, पादरी जी, मेरे भाई पॉल ने खुद को मुझसे और हर ईसाई से अलग कर लिया है। आपको जाकर उससे बात करनी होगी और उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि उसे वापस लौटने की जरूरत है। पादरी पॉल के घर गया, दरवाजा खटखटाया और उसे अंदर आने के लिए कहा गया। अंदर जाने पर उसने पॉल को धधकती हुई आग को घूरते हुए पाया। उन्होंने मौन अभिवादन में सिर हिलाया और पादरी पॉल के बगल में बैठ गया और आग को घूरता रहा। एक क्षण के बाद पादरी ने धातु का चिमटा उठाया, आग से एक सफेद गर्म कोयला उठाया और उसे आग के ठीक बाहर पत्थर के फर्श पर रख दिया। उसने पॉल की ओर सिर हिलाया, मुस्कुराया और इंतजार किया। कुछ मिनटों के बाद कोयला इतना ठंडा हो गया कि उसमें कोई आग नहीं बची। पादरी ने पॉल की ओर सिर हिलाया, कोयला उठाया और उसे वापस आग में फेंक दिया। कुछ देर बाद कोयला फिर से जलने लगा। पादरी हंसे, आखिरी बार पॉल की ओर सिर हिलाया और जाने के लिए उठे। हम वही कोयला हैं, हमारे आसपास दूसरों की जलती हुई आग के बिना हम अंततः ठंडे हो जाएंगे और अपनी आग खो देंगे। हमें अपनी बाइबल पढ़ने, प्रार्थना और उपासना की एक मेहनती दैनिक आदत विकसित करने और अन्य ईसाइयों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देने की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे को परमेश्वर के प्रति आनंद से आज्ञाकारी रहने में मदद कर सकें। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें मजबूत करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और आशीष देंगे। तब वो हमें उन लोगों के साथ सुसमाचार साझा करने का अवसर देंगे जिन्हें इसकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमें। गहराई में देखें, गलातियों 5:22 से लेकर 26 तक, भजन 121:1 से लेकर 8 तक और 1 कुरिन्थियों 12:20 से लेकर 13:13 तक पढ़ें। क्या यह आपके लिए स्पष्ट है कि परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे जिएं? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको उस प्रेम को जीने की शक्ति दे जिसके बारे में आपने इन वचनों में पढ़ा। इस प्रकार के प्रेम को व्यवहार में लाने का आरंभ आप किस एक तरीके से कर सकते हैं, इसे लिखें, फिर जाकर इसे करें।